भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता थारूप अध्याय प्रथम, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, श्लोक संख्या 11। मेरे पीछे बोलिए। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। शब्दार्थ बोलिए। अयन एसो मोर्चों में च भी सर्वेषु सर्वत्र यथा भागम अपने अपने स्थानों पर अवस्थिताः स्थित भीष्मम भीष्म पितामह की एव निश्चय ही अभिरक्षन्तु सहायता करनी चाहिए भवन्तः आप सर्वे सबके सब एव ही निश्चय ही। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। अतएव सब लोग जोर से बोलिए। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। यहाँ धागा लगाकर सब लोग प्रार्थना निकाली। मेरे साथ बोलिए। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकायं चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरोन्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागम रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादां सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पितरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषां शून्यवादी पाश्चात्य देशांतरिणे।
श्लोक फिर से निकालिए, श्लोक को समझेंगे। यहाँ दुर्योधन कह रहा है अयने सूच सर्वेशु यथा भागम अवसिता। किससे कह रहा है? अपने सैनिकों से कह रहा है। दुर्योधन अपने सैनिकों से कह रहा है कि जो लोग जहां पर खड़े हैं वहीं से वे क्या करें, भीष्ममेवाभिरक्षन्तु, केवल भीष्म की रक्षा करें। सबका कार्य एकमात्र क्या है? भीष्म की रक्षा करना है ना। और भीष्म रक्षा करेंगे सबकी। भीष्माभिरक्षितम बलम भीष्माभिरक्षितम, हमारी जो सेना है वो भीष्म के द्वारा रक्षित है। तो भीष्म सबकी रक्षा कर रहे हैं और सबको क्या करना है? भीष्म की रक्षा करना है। अब हम समझेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा ये ना समझ लें कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपयुक्त शब्द कहे। हाँ, तो पिछले श्लोक में दुर्योधन ने कहा था कि हमारी जो सेना है वो भीष्म के द्वारा अभिरक्षित है, इसलिए पर्याप्त है, मतलब विजय प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है हमारी सेना, है ना। तो प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि दूसरे सैनिकों को लगा होगा कि अरे हम बेकार हैं, फिर हमारा फिर क्या महत्व रहा, अगर भीष्म के द्वारा ही अगर विजय प्राप्त होने वाली है तो फिर हम बेवकूफ हैं क्या, है ना। तो दुर्योधन ने फिर जो है ना सबको महत्व देने के लिए ये शब्द कहे, क्योंकि एक राजनीतिज्ञ व्यक्ति जो है ना ये सोचता है कि भाई मेरी बात का असर जो है ना किस व्यक्ति के ऊपर कैसा पड़ रहा है, है ना। इसलिए अगर कुछ ऐसी बात निकल गई जिसका कि कुछ खराब प्रभाव पड़ रहा है तो फिर वो अपनी बात को संभालता है, है ना। तो यहां फिर दुर्योधन ने अपनी बात को संभाला और अब दुर्योधन का कहना है कि भीष्म जी के अलावा जितने योद्धा हैं उनका भी कम महत्व नहीं है, क्यों? क्योंकि उनकी आवश्यकता है क्या? भीष्म जी की रक्षा करें। आगे प्रोपर लिखते हैं। उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्म देव निस्संदेह महानतम योद्धा हैं, किंतु अब वे वृद्ध हो चुके हैं, अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखे। हो सकता है कि वे किसी एक दिशा में युद्ध करने में लग जाएं और शत्रु इस व्यस्तता का लाभ उठा ले। अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चों पर अपनी अपनी स्थिति पर अडिग रहें और शत्रु को व्यूह ना तोड़ने दें। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कुरुओं की बजाय भीष्म देव की उपस्थिति पर निर्भर है। उस युद्ध में भीष्म देव तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा था जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को असहायावस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था और जब उसने उनसे न्याय की भीख मांगी थी। किसने न्याय की भीख मांगी थी? द्रौपदी ने। किससे? भीष्म और द्रोण से। तो भीष्म द्रोण ने कुछ भी द्रौपदी के समर्थन में बात नहीं कही, है ना? ये जानते हुए भी कि इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था, दुर्योधन को आशा थी कि वे इस स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने द्यूत क्रीड़ा के अवसर पर किया था। तो दुर्योधन क्या आशा करता है? ये बड़ा अच्छा तात्पर्य प्रभुपाद जी बता रहे हैं। दुर्योधन क्या आशा करता है कि भीष्म द्रोण यद्यपि नहीं चाहते हैं कि पांडवों के विरुद्ध कोई अत्याचार किया जाए, लेकिन तो भी जब मैं करता हूं अत्याचार तो ये नहीं चाहते वे भी विरोध नहीं करते हैं, मेरा विरोध नहीं करते हैं, पांडवों का समर्थन नहीं करते हैं, तो फिर क्या करूं? इनकी कमजोरी का फायदा उठाऊं, इनकी कमजोरी का फायदा उठाऊं और अपने जो है ना लाभ में इनकी शक्ति का उपयोग करूं, पांडवों का जो है ना विनाश, पांडवों के विनाश में और अपने फायदे में इनका उपयोग करूं। तो उसको ये चिंता नहीं है कि इनके मन की भावना कैसी, इनके हृदय को कितना दुख पहुंच रहा है मेरे कारण, नहीं, इनको जितना भी दुख पहुंचते रहे, लेकिन अगर ये मजबूर हैं कि ये मेरा विरोध नहीं करते हैं तो इनको लगाओ अपने हिसाब से, इस प्रकार से। तो यहां प्रभुपाद जी का तात्पर्य समाप्त हुआ। तो यहां पर जो दुर्योधन ने कहा कि भीष्म की रक्षा करो, तो भीष्म जी ने दुर्योधन को कहा था कि देखो मेरी एक कमजोरी है, भीष्म जी ने कहा, और वो क्या है कि जो शिखंडी है पांडव की सेना में, ये पिछले जन्म में क्या था, स्त्री थी, अंबा नाम की स्त्री, जिससे मैंने विवाह नहीं किया, तो इसने जो ना अब शिखंडी के रूप में जन्म लिया है, लेकिन चूंकि मैं जानता हूं कि ये पिछले जन्म की स्त्री है, इसलिए मैं इसके साथ युद्ध करने वाला नहीं हूं। तो ऐसी स्थिति में जो है ना, अगर कोई वीर पुरुष मेरा वध करेगा तो कर सकता है, क्योंकि उस समय मैं शस्त्र हाथ में नहीं लूंगा। जब तक मेरे हाथ में शस्त्र है तब तक कोई मुझे मार नहीं सकता है ना। तो एक कारण यह भी है कि दुर्योधन ने सबसे कहा कि भीष्म की रक्षा करो, किससे? शिखंडी से। अगर शिखंडी आए भीष्म के सामने तो तुम सब लोग जो ना शिखंडी को नहीं आने देना भीष्म के सामने। अगर शिखंडी आया भीष्म के सामने तो फिर भीष्म की सब शक्ति समाप्त हो जाएगी, क्योंकि वो युद्ध करेंगे ही नहीं तो कोई भी व्यक्ति उनको मार सकता है, कोई व्यक्ति तो नहीं लेकिन अर्जुन जरूर मार सकता है भीष्म जी। शिखंडी क्या करेगा? शिखंडी के बाण तो भीष्म जी की त्वचा में घाव भी पैदा नहीं करते थे, तो शिखंडी क्या करेगा? शिखंडी कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन हाँ ऐसी हालत में अर्जुन के जो बाण हैं वो भीष्म जी का वध कर सकते हैं। तो इसलिए ज्यादा खतरा किससे है? दुर्योधन को ज्यादा खतरा किससे है? शिखंडी से खतरा है कि भीष्म जी के जीवन को खतरा है शिखंडी के कारण। अच्छा, अब हम सुनेंगे एक लेख मैंने लिखा है इस श्लोक पर, जो भगवत दर्शन में छपा था, तो आप लोग इसको ध्यान से सुनिए। ये श्लोक दुर्योधन के द्वारा द्रोणाचार्य के प्रति कहा गया अंतिम श्लोक है, ठीक है ना। दुर्योधन का द्रोणाचार्य के प्रति कथन श्लोक संख्या 3 से प्रारंभ हुआ था और इस श्लोक पर समाप्त होता है। यद्यपि दुर्योधन द्रोणाचार्य से बात कर रहा था, परंतु इस श्लोक से पता चलता है कि वह इस बात को अपने सभी प्रमुख योद्धाओं से बोल रहा है ना। वैसे बोल तो रहा था द्रोणाचार्य से, लेकिन अभी तो सबको बोल रहा है। दुर्योधन का कहना है कि उसकी सेना के जितने महान योद्धा हैं, वे सभी मिलकर भीष्म की ही रक्षा करें। इस बात को दुर्योधन केवल द्रोणाचार्य के ही समक्ष नहीं, बल्कि भीष्म जी तथा अन्य समस्त प्रमुख वीरों के समक्ष बोल रहा है। ये बात सत्य है कि भीष्म जी का पराक्रम सर्वविदित है कि वे कभी भी युद्ध में पराजित नहीं हुए। जब भीष्म जी ने जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य का पालन करने की प्रतिज्ञा की थी, उस समय देवताओं ने भीष्म जी से अपने को पराजित समझा था। उन पर उन्होंने आकाश से पुष्पों की वर्षा की थी तथा उनको भीष्म नाम दिया था। किसने भीष्म नाम दिया इनको? देवताओं ने। किस समय? जब इन्होंने प्रतिज्ञा की कि जीवन भर विवाह नहीं करेंगे। यहां पर एक प्रश्न यह है कि बहुत से लोग जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो फिर भीष्म जी के जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य का पालन करने में क्या विशेषता है, तथा देवताओं ने अपने को उनसे पराजित क्यों समझा था? इसका उत्तर यह है कि सामान्य रूप से जो लोग भी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वे भोगों से सदा दूर रहते हैं। भोगों के बीच में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करना अत्यंत कठिन है। देवतागण स्वर्ग में सदा भोगों के बीच में रहते हैं, तथा वे जानते हैं कि भोगों के बीच में रहकर इंद्रियों को वश में करना कितना कठिन है। देवतागण कभी कभी प्रयास भी करते हैं, परंतु फिर भी वे इंद्रियों को वश में नहीं कर पाते। परंतु भीष्म जी की प्रतिज्ञा अद्भुत थी, वे राज्य को छोड़कर वन में भी नहीं जाएंगे तथा जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। तो ये बड़ी कठिन है, राज्य में ही रहेंगे और ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। देवताओं की दृष्टि में ये प्रतिज्ञा अत्यंत दुष्कर अथवा भयंकर थी। वे इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि कोई व्यक्ति भोगों के बीच में रहकर भी ब्रह्मचर्य का जीवन पर्यंत पालन कर सकता है। इसलिए उन्होंने देवव्रत, जो उनका पूर्व का नाम था, इनका नाम था देवव्रत, को भीष्म नाम दिया तथा उनकी इस प्रकार की प्रतिज्ञा को भीष्म प्रतिज्ञा अर्थात भयंकर प्रतिज्ञा का नाम दिया। हम पूर्व में भी चर्चा कर चुके हैं कि भीष्म एक महाभागवत है तथा भगवत गीता से हम जानते हैं कि 14वें अध्याय में भगवान ने कहा है कि जो उनके अभ्यविचारी भक्ति योग में लगे होते हैं, वे 3 गुणों से ऊपर उठ जाते हैं। जानते कोई श्लोक? 14वें अध्याय का श्लोक, जो भगवान के अभ्यविचारी भक्ति योग में लगे हैं, वे 3 गुणों से ऊपर उठ जाते हैं। माम चोभ्यविचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्यतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। इस प्रकार जो भक्त तमोगुण, रजोगुण तथा सत्वगुण, इन 3 गुणों से ऊपर उठ जाते हैं, उनके ऊपर रजोगुण से उत्पन्न काम का प्रभाव कैसे पड़ सकता है, ठीक है ना। तो भीष्म जी की जो प्रतिज्ञा है, इसका रहस्य यह है क्या कि महाभागवत है ये भीष्म जी, 3 गुणों से ऊपर है, इसीलिए उनके लिए संभव है कि भोगों के बीच में भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। जब तक हम तमोगुण तथा रजोगुण से ऊपर नहीं उठ पाते, तब तक हमें काम रूपी शत्रु से संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भीष्म जी ने अपनी आध्यात्मिक स्थिति के द्वारा देवताओं को पराजित किया था, किसी प्रकार के युद्ध द्वारा नहीं। कभी ऐसी घटना नहीं है कि भीष्म जी ने देवताओं को युद्ध के द्वारा पराजित किया हो। परंतु फिर भी सामान्य लोग इन बातों को ना समझकर यही चर्चा करते थे कि भीष्म जी युद्ध में देवताओं को भी परास्त कर सकते हैं। दुर्योधन जैसे असुर तो भीष्म जी की आध्यात्मिक स्थिति को कभी भी नहीं समझ सकते। दुर्योधन तो केवल इतना ही समझता था कि भीष्म जी तो देवताओं के लिए भी अजय हैं, और इस प्रकार वह भीष्म जी की युद्ध वीरता का उपयोग अपने भोगों की प्राप्ति में करना चाहता था। क्या समझे दुर्योधन क्या चाहता है? अगर भीष्म जी बहुत बलवान है तो क्या लाभ है? मुझे भोगों की प्राप्ति हो जाएगी। यद्यपि शास्त्रों में कहा गया है कि विष्णु की सेवा से बढ़कर विष्णु के भक्त की सेवा है, और भीष्म जी की सेवा वो कर रहा है, सबको कह रहा है क्या कि भीष्म जी की रक्षा करो, है ना। तो शास्त्र में तो कहा गया है कि विष्णु सेवा से भी बढ़कर के विष्णु के भक्त की सेवा है। भीष्म जी विष्णु के महान भक्त हैं तथा दुर्योधन भीष्म जी की सब प्रकार से रक्षा करना चाहता है, तो क्या ये कार्य विष्णु की सेवा या विष्णु की सेवा से भी बढ़कर है? क्या ये है? नहीं नहीं है? क्यों? क्योंकि यहां दुर्योधन के हृदय में सेवा की भावना नहीं है। भीष्म जी के प्रति सेवा की भावना ना होकर दुर्योधन की भीष्म जी के प्रति स्वार्थ की भावना है। दुर्योधन यही सोचता है कि यदि भीष्म जी की किसी प्रकार रक्षा की जाए तो मुझे पांडवों के ऊपर विजय प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार पांडवगण जीवन पर्यंत कष्ट भोगेंगे तथा मैं जीवन पर्यंत भोग करूंगा। यहां पर दुर्योधन की भावना भीष्म जी को प्रसन्न करने की नहीं है। वो चाहता है भीष्म जी की रक्षा हो, लेकिन ये भीष्म जी की प्रसन्नता के लिए नहीं चाहता है। दुर्योधन को पता है कि भीष्म जी का स्नेह पांडवों के प्रति है तथा वे यही चाहते हैं कि दुर्योधन बिना युद्ध किए धर्म के अनुसार पांडवों का राज्य वापस कर दे। परंतु दुर्योधन किसी भी प्रकार से भीष्म जी की इच्छा के अनुसार आचरण नहीं करना चाहता। यहां पर दुर्योधन के मन में भीष्म जी की रक्षा के प्रति चिंता हो रही है, क्योंकि वह भीष्म जी की वीरता के सहारे पांडवों को दुख के समुद्र में डालना चाहता है। इस प्रकार की भावना से दुर्योधन श्री कृष्ण को प्रसन्न नहीं कर सकता। कि भाई कोई सोचे कि भीष्म जी कृष्ण के बड़े भक्त हैं तो वो तो भीष्म जी की रक्षा कर रहा है तो कृष्ण तो जरूर प्रसन्न हो जाएंगे। जब ये कहा जाता है कि भगवान की सेवा से भगवान उतने प्रसन्न नहीं होते जितने भी अपने भक्त की सेवा से होते हैं, तो इसका अर्थ ये होता है कि भगवान की सेवा भगवान को प्रसन्न करने के लिए की जाए, अथवा भक्त की सेवा भक्त को प्रसन्न करने के लिए की जाए। भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान की सेवा का अर्थ है कि भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य किया जाए, अथवा भक्त को प्रसन्न करने के लिए भक्त की सेवा करने का अर्थ है कि भक्ति की इच्छा के अनुसार कार्य किया जाए। ऐसा नहीं है कि हम अपने आप को प्रसन्न करने के लिए भगवान अथवा भक्त की सेवा करें, है ना। ये वास्तव में सेवा नहीं है, बल्कि सेवा के नाम पर क्या है? इंद्रिय तृप्ति। नाम तो सेवा का कि भाई मैं आपकी बहुत सेवा कर रहा हूं, है? लेकिन है क्या? इंद्रिय तृप्ति। इसलिए प्रभुपाद कहा करते हैं, यदि मुझे जल की आवश्यकता है और तुम मेरे लिए गर्म दूध लाते हो तो यह मेरी सेवा नहीं है। नहीं है? आप कहते मैं तो प्रभुपाद की बहुत सेवा कर रहा हूं। यदि कोई व्यक्ति सोचता है कि शिल प्रभुपाद को जल पिलाना तो अत्यंत साधारण सेवा है, अरे क्या पानी पिलाना, मैं उन्हें पिस्ता बादाम डालकर गर्म दूध पिलाऊंगा, तो वह व्यक्ति शिल प्रभुपाद की सेवा ना करके अपने मन की सेवा करता है। जिस समय श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान नाम का उच्च स्वर से कीर्तन करते तथा भक्तों से कराते थे तो कुछ लोगों ने उनका विरोध किया। ये भी देखो पाखंडी। चैतन्य महाप्रभु भगवान के नामों का कीर्तन करते थे भगवान की प्रसन्नता के लिए और भक्तों से कराते थे, तो कुछ पाखंडी लोग विरोध करते थे क्यों? निमाई पंडित, निमाई पंडित मतलब चैतन्य महाप्रभु, निमाई पंडित विष्णु के नामों का जोर जोर से कीर्तन करके विष्णु को क्रुद्ध कर रहा है। देखा, विष्णु के नामों का जोर जोर से कीर्तन करने से विष्णु की निद्रा भंग होती है। ये पाखंडी है। इस प्रकार के लोगों को श्री चैतन्य चरितामृत में पाखंडी कहा गया है, क्योंकि ये लोग भगवान को अपनी मनोधर्मी से समझने का प्रयास करते हैं। भगवान का शरीर हमारे भौतिक शरीर जैसा ना होकर आध्यात्मिक है, तथा भगवान की निद्रा हमारी भौतिक निद्रा जैसी ना होकर आध्यात्मिक है। जब भगवान स्वयं कहते हैं कि जो दिन रात मेरे नामों का कीर्तन करते हैं ये भक्त मुझे प्रिय है, फिर भगवान के विषय में ये कल्पना करने की क्या आवश्यकता है कि भगवान का नाम लेने से भगवान की निद्रा भंग होती है। क्या जरूरत है ये सोचने की? इसी प्रकार से कुछ लोग हरे कृष्ण भक्तों की भी निंदा करते हैं कि ये लोग सदा हरे कृष्ण का कीर्तन करके भगवान को अशांत करते रहते हैं। ऐसा कुछ लोग बोलते हैं कि हरे कृष्ण करते करते भगवान को डिस्टर्ब करते रहते हैं, आप लोग हमेशा हरे कृष्ण करते रहते हो। ऐसे लोग निश्चित रूप से क्या है? पाखंडी। शास्त्रों में कहा गया है कि कलयुग में पाखंड फैल जाता है। ये पाखंड दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का पाखंड, पहला क्या? भगवान की जो प्रामाणिक सेवा जैसे हरिनाम कीर्तन, उसका विरोध करना, और दूसरा अपने मनमाने ढंग से भगवान की सेवा करना अथवा सेवा के नाम पर इंद्रिय तृप्ति करना। जिस समय श्रील प्रभुपाद विदेशों में हरे कृष्ण आंदोलन को फैला रहे थे, उस समय हरे कृष्ण महामंत्र का सड़कों में उच्च स्वर से कीर्तन करते हुए हरे कृष्ण भक्तों को देखकर कुछ ईसाई पादरियों ने विरोध किया। अब वो अपने को भगवान का बहुत बड़ा भक्त समझते हैं ईसाई पादरी, तो हरे कृष्ण भक्तों का सड़कों में कीर्तन देख करके वो विरोध करने लगे इन भक्तों का। अरे तुम लोग भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन इतने जोर जोर से कर रहे हो। कौन बोले? ईसाई पादरी बोले। क्या तुम लोग भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन इतने जोर जोर से कर रहे हो? हम लोगों को भगवान का पवित्र नाम कभी नहीं लेना चाहिए। देखा बड़े भगवान के हित ऐसे बने हुए हैं कि हमको भगवान का पवित्र नाम कभी नहीं लेना चाहिए। क्यों? उनका विचार था कि भगवान का पवित्र नाम यदि हम अपने मुख से लेंगे तो भगवान का पवित्र नाम अशुद्ध हो जाएगा। कितने भगवान का कितना ख्याल रख रहे हैं कि भाई हम भगवान का पवित्र नाम अगर लेंगे तो भगवान का पवित्र नाम क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। कितना ख्याल रखते हैं भगवान का जबकि शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान के नामों के कीर्तन से पापी से भी बड़े पापी शुद्ध हो चुके हैं, परंतु भगवान के नाम की पवित्रता में कोई कमी नहीं होती, शास्त्र कहते हैं। तो फिर ये कल्पना करने की क्या आवश्यकता है कि मुख से भगवान का नाम लेने से भगवान का नाम अशुद्ध हो जाएगा। देखा, भगवान की सेवा के नाम पर कितना जो है पाखंड है, ऐसा कहते हैं। उनका कहना था कि वे लोग भगवान का सामान्य शब्द गॉड भी नहीं बोलना चाहते। वो कहते तुम लोग हरे कृष्णा बोलते हो तो बहुत ज्यादा पवित्र है, अरे हम तो साधारण नाम जो है गॉड, हम तो ये भी नहीं बोलना चाहते, गॉड भी नहीं बोलना चाहते। क्यों? क्योंकि ये भी तो कुछ पवित्र है, हम तो इतना भी नहीं बोलते, गॉड भी नहीं बोलना चाहते, और तुम हरे कृष्णा बोल रहे हो, ये तो बहुत ज्यादा पवित्र है। गॉड भी नहीं बोलना चाहते क्योंकि ये शब्द भी पवित्र है, चाहे इतना पवित्र ना हो हरे कृष्ण जैसा, तो भी ये भी तो भगवान से संबंधित है गॉड, तो ये भी तो पवित्र है, हम तो ये भी नहीं बोलना चाहते। इसलिए गॉड की बोलने के स्थान पर वे जीओडी बोलते हैं, हम लोग जीओडी बोलते हैं, गॉड नहीं बोलते। कितने भगवान का हित चाहते हैं, भगवान का भला चाहते हैं। प्रभुपाद ने अपने शिष्यों से कहा कि अभी भी भगवान को गॉड ना बोलकर जीओडी बोलते हैं, आगे चलकर वे कहेंगे कि ये भी तो बहुत पवित्र है, जीओडी भी नहीं बोलना चाहिए है? तो क्या करेंगे? अतः जीओडी में से प्रथम अक्षर जी और अंतिम अक्षर डी हटाकर केवल बोलेंगे ओ, हाँ ओ बोलेंगे भगवान को, बीच का अक्षर ओ बोलेंगे। अंग्रेजी में ओ अक्षर शून्य जैसा होता है, तो इस प्रकार वे भगवान को शून्य बना देंगे। समझ रहे कितने भगवान का जो है ना ख्याल रखते हैं है? कि हम भगवान का नाम नहीं लेना चाहते हैं। तो ये है सेवा के नाम पर क्या पाखंड। इस प्रकार हम देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति भगवान की अथवा उनके भक्तों की सेवा के नाम पर इंद्रिय तृप्ति करता है तो वो पाखंडी कहलाता है। इसी प्रकार से दुर्योधन पाखंडी है, क्यों? भीष्म जी की सेवा के नाम पर अपनी इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है कि भीष्म जी की रक्षा करो सब लोग, जैसे कि भीष्म जी के प्रति बड़ी श्रद्धा की भावना हो, लेकिन भीष्म जी की कमजोरी का फायदा उठाना चाहता है। भीष्म जी नहीं चाहते हैं वैसा काम कर रहा है। चूंकि दुर्योधन कलयुग का अवतार था अतः उसका चरित्र इतना दूषित है। इस कलयुग में अनेक लोग भगवान की सेवा के नाम पर इंद्रिय तृप्ति करते हैं। इस विषय में दो प्रकार के लोगों का उदाहरण दिया जा सकता है। तो एक तो है व्यावसायिक कथावाचक, भगवान की सेवा के नाम पर इंद्रिय तृप्ति। कुछ लोग भागवत सप्ताह है अथवा अन्य कथाएं सुनाने का शुल्क लेते हैं। ऐसे लोगों को भगवान के प्रति बिल्कुल भी विश्वास नहीं है कि भगवान उन्हें बिना मांगे आवश्यक भोजन तथा वस्त्र देंगे, अतः वे भगवान की कथा सुनाने के पूर्व ही कथा का शुल्क निश्चित करते हैं कि भागवत सप्ताह हम करेंगे तो पहले से तय करते हैं कि हम लेंगे 8 लाख।